So today we are referencing the Prabhupada Lilamrita, and the chapter is called "I Have Done My Part."
तो आज हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पाठ कर रहे हैं और अध्याय का शीर्षक है मैंने अपने हिस्से का कार्य पूरा कर दिया है.
This is from chapter 8.
ये अध्याय संख्या 8 है.
At Srila Prabhupada's request, Tamal Krishna was replying to all correspondence and signing his own name as secretary.
श्रील प्रभुपाद जी ने पूछने पर तमाल कृष्ण महाराज जी ने उत्तर दिया कि वे उनके निजी सचिव हैं.
Under the circumstances, it is not possible for me to read letters to Srila Prabhupada.
इस परिस्थिति में मैं प्रभुपाद जी को प्रतिनिधित्व नहीं कर पाऊंगा.
So this is 1977. Srila Prabhupada is very ill.
ये 1977 है और प्रभुपाद बहुत ही बीमार हैं.
This is why Tamal Krishna Maharaj is talking like this.
इसीलिए तमाल कृष्ण महाराज इस तरह का बात कर रहे हैं.
I simply inform him of any good news which comes.
मैं कोई भी अच्छी खबर आती है तो सुनाऊंगा.
So I have told him of your successful town hall meeting as well as other preaching activities.
तो मैंने बता दिया है कि कौन सी चीज होने वाली है.
These letters were almost as valuable as Srila Prabhupada's since they were often filled with direct quotes from Prabhupada.
ये सारे जो पत्र हैं प्रभुपाद जी के द्वारा बताए गए हैं और सीधा प्रभुपाद जी के इसमें कोट हैं.
One evening, Srila Prabhupada called for all the available sannyasis.
एक शाम को प्रभुपाद जी ने सारे के सारे सन्यासियों को बुलाया.
He said he was feeling tired, but like a father happy to have his children with him, he said, "You should all come to be with me like this, and I feel better."
प्रभुपाद ने कहा कि यद्यपि मैं थका हुआ हूँ, लेकिन फिर भी जैसे जिस प्रकार एक बीमार पिता अपने बच्चों के साथ में खुश होता है, उसी प्रकार से मुझे आप सबके सानिध्य में खुशी अनुभव होती है.
At one point, Srila Prabhupada called for his disciples from all over the world to come to Vrindavan.
किस समय प्रभुपाद जी ने तमाल कृष्ण महाराज को कहा?
But there were some communication problems.
पर कोई समस्या थी कोई कम्युनिकेशन में.
Logistic problems.
और रहने सहने की भी समस्या थी.
So not all the devotees from around the world came.
सारे के सारे भक्त नहीं आ पाए थे. पूरे विश्व के सारे भक्त नहीं आ पाए थे.
I'm reviewing because it gives a context.
मैं पहले का इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि
So Srila Prabhupada's mood moved and varied within the realm of transcendental emotions and attitudes.
यहाँ प्रभुपाद जी का जो भाव है वो दिव्य भावनाओं से युक्त है.
To some of his disciples attending him, he said, "I am thinking I am worthless person."
कुछ भक्तों को उन्होंने कहा कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं किसी कार्य का व्यक्ति नहीं हूँ.
Taking so much service.
इतनी सारी सेवा ले रहा हूँ.
There is no way I can repay you.
और मैं किसी भी तरह से आपको आपका कर्ज नहीं चुका पाऊंगा.
I am poor in every respect.
और हर स्थिति में मैं गरीब हूँ.
Financially and spiritually.
आध्यात्मिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी.
So it's very important to understand this is demonstrating the proper mood of a Vaishnav.
ये समझने की बात यहाँ ये है कि ये प्रभुपाद जी अपने आदर्श वैष्णव व्यवहार को प्रस्तुत कर रहे हैं.
If a devotee is secretly thinking, "Aham bhogi, I am the enjoyer."
अगर कोई भक्त सोचता है अंदर ही अंदर कि मैं भोगता हूँ.
"Aham ishwara, I am the controller."
मैं ही नियंत्रक हूँ, ईश्वर हूँ.
Sometimes neophyte devotees, even if they have big management position, they may think like that.
कभी कभी नौसिखिए भक्त जब उनको बड़ी बड़ी उपाधियां मिल जाती हैं प्रबंधन में तो इस प्रकार का भावना सोचने लगते हैं.
But as the most perfect acharya, we see the mood of complete humility shown by Srila Prabhupada. That is the most advanced level of acharya.
परंतु यहाँ हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी पूर्ण रूप से आचार्य की परिकाष्ठा पे होने के कारण पूर्ण विनम्रता प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए वो आचार्यों में भी सबसे महान है.
Just like Krishnadas Kaviraj Goswami, the author of Chaitanya Charitamrita.
जैसे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी जो कि चैतन्य चरितामृत के लेखक हैं.
He was asked by the devotees to write on Sri Sri Radha Krishna's Astakala Lila at Radhakund.
उन्हें भक्तों ने आग्रह किया कि आप राधा कृष्ण की अष्टकालीय लीला के विषय में लिखिए राधा कुंड पर.
He told the devotees, I'm not fit to write on these high subjects.
उन्होंने भक्तों को कहा कि मैं इतने उन्नत विषयों पर लिखने के लिए योग्य नहीं हूं.
But on your request, in other words, serving the Vaishnavas, to fulfill the desire of the Vaishnavas.
परंतु आप सबों की सेवा के लिए, भक्तों की इच्छाओं को पूरी करने के लिए मैं इसका प्रयास करता हूं.
I'll try to do a little something.
कुछ थोड़ा प्रयास करूंगा.
But I'm just a clown. This is a direct quote from Krishnadas Kaviraj Goswami. I'm just a clown.
और कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि मैं एक जोकर के समान हूं.
If you really want to hear about the pastimes of Radha Krishna,
अगर आप वास्तविकता में राधा कृष्ण के लीला के श्रवण करना चाहते हैं,
you have to hear from a real devotee like Srila Rupa Goswami.
आपको एक असली भक्त से श्रवण करना चाहिए जो कि रूप गोस्वामी हैं.
So the heaviest acharyas like this, we see that this is the example for us at all time.
तो हमारे आचार्य हमको ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि हमें हमेशा के लिए आने वाले सभी समयों के लिए इस उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए.
So I'll continue. Early one morning, Srila Prabhupada awoke suddenly.
एक बार प्रभुपाद सुबह सुबह जल्दी उठ गए.
I had a dream, he said to the devotees attending him.
और भक्तों को कहा कि मेरे को एक स्वप्न देखा, मैंने एक स्वप्न देखा है.
There was a big assembly of drunkards and chanters.
पियक्कड़ों और कीर्तनियों का एक बड़ा समूह जमा है.
The drunkards were madmen.
शराबी सभी पागल हैं.
Some of the drunkards were becoming chanters.
और कुछ शराबी कीर्तन करने लग रहे हैं.
They cannot stop fighting.
आपस की लड़ाई नहीं छोड़ पा रहे हैं.
The drunkards are so crazy.
शराबी संगीमी हैं.
Were you there also? Asked Tamal Krishna.
तमाल कृष्ण महाराज ने पूछा क्या आप भी वहाँ उपस्थित थे?
Yes, I was standing there also, he replied.
हाँ, मैं भी वहाँ खड़ा था.
Were some of the chanters becoming drunkards?
क्या कुछ कीर्तन करने वाले भी शराबी बन रहे थे?
Srila Prabhupada replied, chanters cannot fall down.
प्रभुपाद ने उत्तर दिया, कीर्तनियों का पतन नहीं हो सकता.
These, their names are listed back to home, back to Godhead.
उनके नाम परम धाम जाने वालों में लिखे होते हैं.
They are Krishna's family.
वे कृष्ण के परिवार के सदस्य हैं.
This is very important to understand. Devotees are not ordinary human beings.
ये समझना बहुत जरूरी है कि भक्त साधारण जीव नहीं हैं.
In the Bhagavad Gita, Krishna makes this clear.
Bhagavad Gita mein Bhagwan ise spasht kar rahe hain.
Sa mahatma sadurlabha. That mahatmas, those who are on the path of self-realization, are very, very rare.
Ki jo mahatma hain, jo adhyatmik sakshatkar ke path pe hain, ve bahut hi durlabh hain.
Path of self-realization includes Brahmavadis, Mayavadis, impersonalists. It includes Jnanis, Yogis, they're all to some degree on the path of self-realization.
Atma sakshatkar ka path brahmavadi, mayavadi aur gyani, yogi ityadi in sabon ko in sabon ke bare mein ye sab isme aate hain.
But any path except pure devotional service under direction of a bona fide spiritual master.
और जो भक्ति है एक ब्राह्मणिक गुरु के अंतर्गत रह के करना वो भी आत्म साक्षात्कार के पथ में से एक है.
So in our society, except for those that took direct initiation from Prabhupada, there's very few devotees. There's hardly any who physically met Srila Prabhupada.
हमारी इस्कॉन संस्था में भी बहुत ही कम भक्त हैं जो प्रभुपाद जी से सीधा सीधा संपर्क प्राप्त कर पाए थे.
Without physical association, that is considered is called vapu.
और जो प्रभुपाद जी का व्यक्तिगत संघ होता था उसे वपु संघ कहते हैं.
But more important than vapu is vani.
परंतु वपु से ज्यादा महत्वपूर्ण वाणी है.
Vani is instructions of the spiritual master and acharyas.
वाणी आध्यात्मिक गुरु और आचार्यों की निर्देश हैं.
So our movement is running on the vani of Srila Prabhupada since he's not physically with us anymore.
तो हमारा जो आंदोलन है वो प्रभुपाद जी की वाणी के आधार पर चलायमान है क्योंकि प्रभुपाद जी को अप्रकट हुए बहुत समय हो चुका है.
I just heard a quote from CEO of World Bank.
मैंने अभी अभी वर्ल्ड बैंक के CEO का एक कथन सुना.
He is very impressed with ISKCON.
वो ISKCON से बहुत ही प्रभावित है.
He says, whatever center you go to, there is Mangalarti, there is Guru Puja, there's chanting of rounds.
वो कहते हैं कि वो पूरे विश्व में किसी भी ISKCON के केंद्र में जाते हैं तो उनको उसी प्रकार की दिनचर्या देखने को मिलती है, मंगल आरती, गुरु पूजा, जपा इत्यादि.
He said, even in our organization, we don't have such uniformity.
यहाँ तक कि हमारी अपनी वर्ल्ड बैंक संस्था में भी ऐसा यूनिफॉर्मिटी, एक प्रकार का डिसिप्लिन नहीं प्राप्त होता.
That's funny. That's how this movement is going on without Srila Prabhupada's personal physical presence.
तो ये प्रभुपाद जी की वाणी का प्रभाव है और इसी के कारण ISKCON संस्था अभी भी उन्नति कर रही है.
Of course, Srila Prabhupada is still physically, not physically, but he's present in the murtis, he's present in his instruction.
निश्चित रूप से प्रभुपाद जी अपने अर्चा विग्रह में भी उपस्थित हैं और अपनी वाणी में भी उपस्थित हैं.
I just read a letter that Prabhupada wrote to one of his disciples in 1968.
मैंने अभी अभी एक पत्र पढ़ा जो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को लिखा था 1968 में.
It's very extraordinary.
बहुत ही विचित्र पत्र है.
In that letter, Prabhupada explains that the residents of Braj, they are the topmost yogis.
उस पत्र में प्रभुपाद लिखते हैं कि जो व्रजवासी हैं वे सबसे उन्नत योगी हैं.
He informs his disciple that just as the Supreme Personality of Godhead has expansions, similarly his highly advanced Nityasiddha devotees, they also may have expansions.
उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि जिस प्रकार से परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण विस्तार कर सकते हैं उसी प्रकार से उनके महान भक्त जो उनके नित्य सिद्ध पार्षद हैं वे भी विस्तार कर सकते हैं.
The disciple had asked whether or not Arjuna and Kunti Devi and so forth were in Goloka Vrindavan.
भक्तों ने पूछा कि क्या अर्जुन, कुंती महारानी ये भी गोलोक वृंदावन में हैं?
But he replied that they are always in the material world.
प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि वे हमेशा भौतिक जगत में रहते हैं.
Carrying out pastimes in the world in different universes.
और इस जगत में अलग-अलग ब्रह्मांडों में प्रभु भगवान की जहां लीला हो रही है वहां पर वो रहते हैं.
But the most shocking thing is, he says that they may be engaged in nitya lila in various and multiple universes simultaneously.
और सबसे विस्मित करने वाली बात कहते हैं कि एक साथ ही वो बहुत सारे ब्रह्मांडों में नित्य लीला में भगवान की सेवा में नियत हो सकते हैं.
From this we understand what Srila Prabhupada's actual position is.
तो इससे हम ये समझ सकते हैं प्रभुपाद जी की वास्तविक स्थिति क्या है.
There are so many merchants of Prabhupada around the world now.
आज श्री प्रभुपाद जी के बहुत सारे अर्चा विग्रह हैं पूरे विश्व में.
Are they plastic or are they actually Srila Prabhupada incarnate in a particular form?
क्या वास्तविकता में वो प्लास्टिक हैं या प्रभुपाद जी का अवतार हैं?
So this 1968 letter to his disciple actually answers that question.
और ये 1968 का जो पत्र है इस प्रश्न का उत्तर करता है.
The unfettered spirit soul, you know, unfettered means without restriction. They have got the powers, super yogic powers, more than Durvasa. Durvasa is the most famous yogi in the material world. But they, Brajabasis, who descend into this material world, they have more power than Durvasa, infinitely more.
तो जो नित्य सिद्ध भगवान के संगीगण हैं और विशेष रूप से ब्रजवासी हैं, उनके पास जो शक्ति है वो यो महान महान योगियों से कई गुना ज्यादा है, यहाँ तक कि दुर्वासा मुनि से भी बहुत ज्यादा ज्यादा शक्ति है.
So it's very important to understand this movement's going on under Srila Prabhupada's supervision, although he left his material body.
ये समझना बहुत जरूरी है कि ये आंदोलन चल रहा है श्रीला प्रभुपाद जी के निर्देशन में, यद्यपि वो अपने व्यक्तिगत रूप से अप्रकट हो चुके हैं.
On Facebook, Indrajit Swami published a important occurrence.
Facebook पे इंद्रजीत महाराज ने एक महत्वपूर्ण आर्टिकल दिया है.
He had a particular question that he wanted to ask Srila Prabhupada, but of course, Srila Prabhupada was not physically with him.
विशेष उनका एक प्रश्न था जो प्रभुपाद से पूछना चाहते थे, लेकिन प्रभुपाद जी उपस्थित नहीं हैं.
So he had a dream. Indrajit Swami had a dream.
तो महाराज को एक स्वप्न आया.
In that dream, Srila Prabhupada answered his question without Indrajit Swami saying anything.
और उस स्वप्न में श्रील प्रभुपाद जी ने उस प्रश्न का उत्तर उनको दिया, जबकि उन्होंने पूछा भी नहीं.
Indrajit Swami was very surprised.
और इससे इंद्रजीत महाराज बहुत ही अचंभित हुए.
He said, Srila Prabhupada, how did you know what my question was?
तो उन्होंने पूछा, प्रभुपाद जी आपको कैसे पता लगा मेरा प्रश्न क्या है?
Prabhupada replied, I'm keeping an eye on you.
प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि मेरी दृष्टि हमेशा आप पर रहती है.
That means from the spiritual world. From the spiritual world.
उसका अर्थ है कि आध्यात्मिक जगत से प्रभुपाद जी देख रहे हैं.
Srila Prabhupada is not inert, inactive.
प्रभुपाद जी कोई शिथिल नहीं है.
But he's still supervising this movement and empowering his disciples and grand disciples.
अभी भी वो पूरे के पूरे आंदोलन का संचालन कर रहे हैं, निर्देशन कर रहे हैं अपने शिष्यों को, और अपने शिष्यों के शिष्यों को शक्ति का आवेश प्रदान कर रहे हैं.
Everything that's going well in this movement, book distribution, daily worship, and preaching is by the empowerment of Srila Prabhupada. By devotees, that is to say, received by devotees who never physically met him, but are running on his vani.
तो जो भी आंदोलन के मुख्य कार्य हैं, अर्चा विग्रहों का अच्छे से अर्चना करना, पुस्तक वितरण इत्यादि, ये सभी सुचारू रूप से चल पा रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद जी शक्ति का आवेश कर रहे हैं उन सभी शिष्यों के शिष्यों को जिन्होंने कभी भी सीधे सीधे साक्षात प्रभुपाद जी का संग नहीं किया.
So I'll continue reading from Lilamrita.
तो मैं लीलामृत से पढ़ना दोबारा से आगे बढ़ते हैं.
After the GBC assembly in Vrindavan, Swarup Damodar Maharaj had traveled to Manipur and Calcutta and was now returning to Vrindavan to see Srila Prabhupada.
वृंदावन में GBC की बैठक के बाद स्वरूप दामोदर मणिपुर और कलकत्ता की यात्रा पर गए थे.
As soon as Srila Prabhupada heard that Swarup Damodar Maharaj had arrived, he asked to see him.
अब वे श्रील प्रभुपाद से मिलने वृंदावन वापस आए थे. जो ही श्रील प्रभुपाद को उनके वापस आने का समाचार मिला, उन्होंने स्वरूप दामोदर को अपने पास बुलाया.
As usual, Srila Prabhupada treated him very specially and gave him much time and attention.
हमेशा की तरह श्रील प्रभुपाद ने उनके साथ विशेष व्यवहार किया और उन्हें अधिक समय तथा ध्यान दिया.
That's an interesting point.
ये बहुत महत्वपूर्ण रुचिकर बात है.
I saw this myself personally in Los Angeles.
मैंने ये लॉस एंजलिस में व्यक्तिगत रूप से भी देखा था.
I was doing devotional service in Los Angeles at that time.
उस समय मैं लॉस एंजलिस में अपनी भक्ति का अभ्यास कर रहा था.
Subramanian Maharaj was still a student at the University of California in Los Angeles.
और स्वरूप दामोदर महाराज कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के छात्र थे.
But he never came to the temple except unless Srila Prabhupada was in town.
परंतु जब तक वो कई मंदिर आते नहीं थे, जब तक प्रभुपाद जी शहर में होते थे तभी आते थे.
That used to bother me.
और इससे मुझे चिंता होती थी.
But as it's described here, when Prabhupada was there, Srila Maharaj would immediately come to see him.
परंतु जैसे यहाँ बताया गया है कि जब प्रभुपाद जी आते थे तो स्वरूप दामोदर महाराज एकदम से उनसे मिलने आते थे.
And Prabhupada would lavish him with plentiful attention.
और प्रभुपाद जी उन पे विशेष ध्यान देके उनको सम्मानित करते थे.
I'll confess that I was a little envious because I was already a semi-senior devotee. I was much more senior to Srila Damodar Maharaj. He probably was not a sannyasi yet.
तो मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि मुझे कुछ द्वेष अनुभव होता था, क्योंकि विशेष मैं स्वरूप दामोदर महाराज से बहुत वरिष्ठ वैष्णव था और उस समय महाराज सन्यासी नहीं थे.
I had no clue who he really was.
तो मुझे कोई भी इस बात की भनक भी नहीं थी कि वास्तविकता में स्वरूप दामोदर महाराज कौन थे.
I was thinking in a mundane way.
मैं भौतिक रूप से देख रहा था.
Who is this guy?
ये कौन है?
Student at the university, and then he just comes here, and Prabhupada is paying so much attention to him. Why?
केवल एक विश्वविद्यालय का छात्र है, और प्रभुपाद जी इतना ध्यान दे रहे हैं, क्यों?
That was a very mundane way.
तो भौतिक रूप से मैं ऐसे सोच रहा था.
But the point is that Srila Prabhupada knew perfectly well who he was and what he was going to accomplish.
परंतु मुख्य बात यह है कि प्रभुपाद जानते थे कि वो कौन हैं और वो क्या करने वाले हैं आगे.
At that time, Subramanian Maharaj was the only scientist in the movement. Now there's quite a few scientists, but at that time, Subramanian Maharaj was the only scientist.
उस समय स्वरूप दामोदर महाराज एकमात्र वैज्ञानिक थे हमारे आंदोलन में. आज की तारीख में कुछ ज्यादा वैज्ञानिक हैं, लेकिन उस समय केवल वही एक मात्र वैज्ञानिक.
So Srila Prabhupada was investing in him to be the forefront of the phalanx, you know, phalanx, military formation to fight against the atheism of the scientific world.
तो प्रभुपाद जी ने उनको शक्ति का आवेश किया कि वो जो वैज्ञानिक रूप से जो नास्तिकतावाद का प्रचार हो रहा है आजकल समाज में, उसका खंडन और उसका प्रतिरोध करें.
There's quite a few recordings of Srila Prabhupada on a morning walk in Los Angeles on the beach. He used to like to take his walk on the beach.
तो लॉस एंजलिस के समुद्री तट पर प्रभुपाद जी जब सुबह की अपनी यात्रा करते थे मॉर्निंग वॉक, तो उनके साथ उनका कुछ वार्तालाप रिकॉर्डेड है.
And on these walks, he always have his disciple play the materialist.
और उन मॉर्निंग वॉक्स में प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को भौतिकतावादी लोगों का ड्रामा या रोल करने के लिए बोलते थे.
So on one walk, Prabhupada was saying, "Why Sunday, Monday?"
तो प्रभुपाद जी एक मॉर्निंग वॉक पे कहते हैं, संडे मंडे क्यों है?
Because there was all this talk about the moonshot allegedly made by United States, which never happened.
क्योंकि उस समय चंद्रमा पे जाने की जो खबर थी बहुत फेमस थी कि हम चंद्रमा पे गए हैं अमेरिका में.
There was one devotee in Los Angeles who used to work for NASA.
एक भक्त था लॉस एंजलिस में जो नासा के लिए कार्य करता था.
National Aeronautics, the Rocket Department of the United States Government.
अमेरिका का जो अंतरिक्ष का जो रिसर्च का डिपार्टमेंट है उसे नासा कहते हैं.
He said that the booster rockets, the giant rockets, strong enough to lift the satellite out of the Earth area and far enough to go anywhere near the moon. It blew up in the hangar. Hangar means in the construction area, the buildings, the sheds where the construction goes on.
तो जो रॉकेट थे जो सैटेलाइट को धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर लेके जाके अंतरिक्ष में स्थापित करने वाले रॉकेट थे वो जो कंस्ट्रक्शन साइट थी वहां पे वो फूट गए.
He said that therefore that because the strongest rocks necessary strong rocket it blew up in the shed therefore there was no chance that the satellite could have gone as far as required.
और क्योंकि ऐसे वो फूट गए तो फिर जो सैटेलाइट थी वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी.
So what the world saw on television of a rocket going up in the sky, big deal, so what?
तो लोगों को टेलीविजन पे दिख रहा था कि एक रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इससे इसका वैसे ज्यादा क्या महत्व है.
So everybody saw a rocket going up in the sky.
सबने देखा कि रॉकेट ऊपर जा रहा है.
But where was it going?
और वास्तविकता में क्या हो रहा था?
Well, they don't tell you that it was just crashing in the ocean somewhere. That wasn't on television.
तो टेलीविजन में ये तो दिखाया गया कि रॉकेट ऊपर गया, लेकिन ये नहीं दिखाया गया कि वो फिर एक समुद्र में जाके गिर गया.
Point is that Prabhupada made it clear why Sunday, Monday.
तो महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभुपाद जी ने इसको स्पष्ट किया कि संडे और मंडे का क्या कारण है.
But the moon is further away than the sun.
क्या जो चंद्रमा है वो सूर्य से ज्यादा दूर है.
Therefore, there's no chance that any rocket from Earth could have gone there. No chance, it's too far away.
तो इस बात की तो कोई भी संभावना नहीं है कि कोई रॉकेट चंद्रमा तक गया हो, ये संभव नहीं है.
In 1969 was the year of the moon, alleged moonshot.
1969 जो सन है उसमें ऐसा बताया जाता है कि जो मून लैंडिंग हुई थी.
It was the hottest item for the news media.
और पूरे के पूरे न्यूज एजेंसी के लिए सबसे गर्मा गर्म खबर थी.
So they thought it would be fun to see in the airport. The reporters came up. I thought it would be fun to ask the Swami.
तो प्रभुपाद जी जब एयरपोर्ट पर थे तो बहुत सारे रिपोर्टर आए प्रभुपाद जी से इसके विषय में पूछने के लिए और थोड़ा उनको लगा कि इसमें थोड़ा आनंद का अनुभव करने को मिलेगा.
स्वामी, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द मून शॉट?
कि स्वामी आपको मून लैंडिंग के बारे में क्या कहना है?
प्रभुपाद रिप्लाइड.
प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया.
We did not go to the moon.
कि वो चंद्रमा पे नहीं गए.
That was like popping a helium balloon with a pin. The reporter couldn't believe it because everybody was, you know, gushing. Gushing means babbling on and on about this fantastic occurrence, you know, in history. It was all, you know, fantasy.
तो यद्यपि पूरा का पूरा समाज इस बात के जश्न मना रहा था कि अमेरिका चंद्रमा पर पहुंच गया, लेकिन प्रभुपाद जी के इस वाक्य से उस रिपोर्टर का सारा उत्साह ध्वस्त हो गया.
So Prabhupada saw who he knew who Supratamana Maharaj was and what he would accomplish. In fact, he knew about all of his disciples and followers and admirers, who they were and what they would accomplish, and so he invested in them.
तो प्रभुपाद जी जब जानते थे कि स्वरूप दामोदर महाराज कौन है और वो क्या करेंगे, और उनका ही नहीं अपने सभी शिष्यों के बारे में प्रभुपाद जी जानते थे और इसीलिए उन्होंने अपने शिष्यों को उसी प्रकार से प्रशिक्षित किया.
So, others might not understand, like I didn't understand, I had no clue who Supratamana Maharaj was.
दूसरों को शायद समझ में ना आए, जैसे कि मुझे समझ में नहीं आया, मेरे को कोई भी इस बात की भनक नहीं थी कि स्वरूप दामोदर महाराज कौन है.
I only know he was a student from the university and that Prabhupada was lavishing him with so much attention that I wasn't getting.
तो मेरे को तो बस यही लग रहा था कि वो तो एक यूनिवर्सिटी के छात्र हैं बस, और प्रभुपाद जी इतना उनको ध्यान दे रहे हैं और ऐसा ध्यान मुझे तो मिल नहीं रहा.
So, Supratamana, he had been Thodam Singh, a PhD candidate in organic chemistry at UCLA or University of California, Los Angeles.
स्वरूप दामोदर से पहली मुलाकात होने के दिन से जब स्वरूप दामोदर थाउडम सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीएचडी के शोध छात्र थे, प्रभुपाद ने उनसे संबंध विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया था।
So Srila Prabhupada was taking great care to cultivate their relationship.
तो प्रभुपाद जी बहुत ध्यान दे रहे थे अपना संबंध उनके साथ स्थापित करने में।
Sudam had grown up in Manipur, but after graduating from high school, had come to America to continue his education at the University of California.
थाउडम मणिपुर में पलकर बड़े हुए थे और वहां के हाई स्कूल करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय अमेरिका चले गए थे।
He had been attracted by the devotees chanting Hare Krishna on the streets of Los Angeles.
वे लॉस एंजेलिस की सड़कों पर भक्तों के कीर्तन से आकृष्ट हुए थे।
And had visited the temple.
और मंदिर देखने गए थे।
When he met Srila Prabhupada, he became convinced that he had met a genuine spiritual master.
जब उनकी भेंट श्रीला प्रभुपाद से हुई तो उन्हें विश्वास हो गया कि वे एक सच्चे आध्यात्मिक पुरुष से मिले हैं।
At that time, here I was taking the position of mundane scientist.
पहले थाउडम ने ऐसा रुख दिखाया जैसा कि वे अनुभव आधारित वैज्ञानिक ज्ञान की दुनिया के प्रतिनिधि हों।
And Srila Prabhupada invited Srila Jamadar to come for morning walks in Venice Beach, which I previously mentioned.
और प्रभुपाद ने वेनिस बीच पर प्रातःकालीन भ्रमण के लिए उन्हें आमंत्रित किया।
So he seemed like an ordinary university student, but that was illusion. He was not ordinary ever.
वे कोई सामान्य विश्वविद्यालय छात्र नहीं थे, ये केवल भ्रम था।
He was automatically attracted by Krishna consciousness because he was from Manipur. Manipur used to be a Vaishnav state.
वे कृष्ण भावना अमृत से आंदोलन से स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो गए क्योंकि वो मणिपुर राज्य से थे। मणिपुर राज्य एक वैष्णव राज्य था।
They have got hardcore ruchi in Krishna Lila.
उनको कृष्ण लीला में बहुत ही गहरी रुचि होती थी।
I've been to Manipur.
मैं मणिपुर गया हूँ।
So when I was there, it was a Janmashtami time.
मैं जब वहां गया था तो जन्माष्टमी का समय था।
So they had erected a special pavilion for dancers and performers.
उन्होंने नर्तकों के लिए एक विशेष पैविलियन बनवाया था।
The Manipuris are very expert at dance and they're expert drum playing and musicians and they chant the holy names of the Lord.
तो मणिपुर के जो भक्त हैं वो नृत्य में और ड्रम बजाने में बहुत ही दक्ष होते हैं और
they're so deep into the Krishna culture they could sit there for 10 hours and watch this show. I wasn't able to sit there for 10 hours. I stayed for a couple hours to watch them dancing and singing and all that, you know. But they sit there for 10 hours, very long show, because they got the deep ruchi.
तो उनकी इतनी गहरी रुचि होती है कृष्ण संस्कृति में कि वो 10-10 घंटे बैठकर वो नाटक देख सकते हैं। मैं तो 10 घंटे नहीं बैठ पाया।
All pure Krishna culture.
पूरा शुद्ध कृष्ण संस्कृति।
There is something else amazing also.
और एक और चीज विस्मय करने वाली थी।
An art that I think is unknown in other parts of India.
मेरे को नहीं लगता कि दूसरे भारत के दूसरे शहरों में इसके बारे में पता होगा।
This one performer.
एक नर्तक है।
He was playing two conch shells simultaneously.
वो दो शंख साथ में बजा रहा था।
You heard me. It's not an ordinary art. It's a very extraordinary art. I mean, who could do that? Nobody could do that.
ये बहुत ही विशेष कला है। एक ही व्यक्ति एक साथ दो शंख बजाए।
So Day after day, Srila Prabhupada would draw Thudam into arguments about the origin of life.
आए दिन थाउडम को श्रीला प्रभुपाद जीवन के स्रोत के संबंधित वाद विवाद में खींचा करते थे।
When he was ready to argue, he would glance around and ask, "Where is the scientist?"
जब श्रीला प्रभुपाद तर्क के लिए तैयार होते तो चारों ओर देखते और कहते, "इस वैज्ञानिक कहाँ हैं?"
So catching sight of Thudam, he would ask, "So what do they say?" Meaning, in other words, he would pump the devotees for information about what are they saying in the mundane world.
और थाउडम को देखते ही वे पूछते तो वे क्या कहते हैं विशेष रूप से प्रभुपाद जी अपने भक्तों के माध्यम से भौतिकतावादी नास्तिक लोगों के विचारों को जानते थे.
So Thudam would then repeat what they were teaching in the universities.
तो थाउडम तब दलील देते कि जीवन का जो वो अपनी कक्षा में पढ़ते थे वो बताते
that life had arisen by chance through chemical evolution.
कि जो जीवन है वो रासायनिक विकास से अचानक उत्पन्न हुआ है.
And Srila Prabhupada would smash the argument with stunning display of logic and common sense.
और श्रीला प्रभुपाद उस दलील को जोरदार तर्क और सहज बुद्धि के प्रदर्शन से ध्वस्त कर देते थे.
So Thudam, by regularly associating with Srila Prabhupada and by reading the Bhagavad Gita as it is, he had become more inclined to Krishna consciousness than to material science.
Srila Prabhupada se nitya satsang hone aur Bhagavad Gita yatharup ko padhne se Thaudam ki ruchi bhautik vigyan ki apeksha Krishna bhavana amrit ki or adhik hoti gayi.
So eventually became Srila Prabhupada's initiate disciple Swarup Damodar Das.
और अंततः वे प्रभुपाद के दीक्षित शिष्य स्वरूप दामोदर दास बन गए.
So with Srila Prabhupada's encouragement, Swarup Damodar had soon received his PhD.
श्रील प्रभुपाद से प्रोत्साहन पाकर स्वरूप दामोदर ने शीघ्र अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली.
So he pledged to serve Srila Prabhupada through scientific lectures and writings against the theories of modern atheistic science.
और आधुनिक निरीश्वरवादी विज्ञान के विरुद्ध वैज्ञानिक भाषणों और लेखों से श्रील प्रभुपाद की सेवा करने में वे प्रतिज्ञाबद्ध हो गए.
So the main point is Srila Prabhupada was investing heavy. You know, when you take money and you invest in a bank because you expect a return. So that's what Prabhupada was doing with Swarup Damodar Maharaj.
तो मुख्य बात यह है कि प्रभुपाद जी स्वरूप दामोदर महाराज में विशेष रूप से निवेश कर रहे थे. जैसे हम किसी बैंक में या किसी संस्था में निवेश करते हैं रिटर्न्स प्राप्त करने के लिए.
So stop there.
तो हम यहाँ पे विराम देंगे.
श्री प्रभुपाद की जय.
जय
गोपीनंदी हरि हरि बोल.
परम पूज्य भक्ति माधुर्य गोविंद स्वामी महाराज की जय.